नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समयुक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योगी कृपा क्षमा कीजिए, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। कृष्णा तो आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए स्वागत है। आजकल मंदिर में बहुत ही सुंदर उत्सव चल रहा है, झूलन यात्रा, जो कि श्रावण के इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये चलता है। वृंदावन में तृतीय से लेकर पूर्णिमा तक चलता है और यहां राधा कृष्ण को झूली पर सवार करके फिर उनका झूलन होता है। वृंदावन में बहुत मधुर उत्सव होता है, ये हर साल होता है। तो आप शाम के समय भी आकर, कल परसों तक चलेगा, आप आकर राधा कृष्ण को झूला सकते हैं झूले में। वैसे हम झूला जन्माष्टमी तक रखेंगे, हालांकि उत्सव पूर्णिमा के दिवस पर समाप्त होता है, तो आप आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी तो बहुत सारे हैं, अष्टांग योगी हैं, राज योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ वो है जो कि श्रद्धा से उनका भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, और हमेशा निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करते रहता है। मत गतेन अंतर आत्मना, तो ये है सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे हुए योगी का परिचय। लेकिन हमारे मन में जब योगी शब्द कहते हैं तो क्या स्मरण आता है? कोई व्यक्ति हिमालय में बैठा हुआ, एक कपड़ा पहना हुआ और जटा सिर में, लंबे बाल, लंबे दाढ़ी, या तो फिर खीले के शैया पे लेटा हुआ, या तो फिर अपने सर में खड़ा हुआ, या तो फिर गंगा जी में ठंडे में अपने आप को सर तक डुबाए हुआ, या ऐसे कुछ हम सोचते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करता है, भगवान का शुद्ध भक्त बनता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त योगी सबसे ऊंचा योगी होता है। अभी हम देखते हैं कि समाज में नाना प्रकार के योगी आते हैं और क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, इसलिए थोड़े से बहुत इधर उधर के चमत्कार दिखाकर वो लोगों को प्रभावित करते हैं और फिर जो अज्ञानी जनता है वो उनको भगवान कहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी भारतवर्ष में हर गांव में, हर दूसरे तीसरे गली में कोई ना कोई भगवान है, नहीं? हर जगह कोई ना कोई, किसी ने थोड़ी विभूति निकाल दी वो भगवान बन गए, किसी ने कुछ कोई गरम कोयले पे चला वो कोई चले तो वो भगवान बन गए। लेकिन भगवान की परिभाषा तो ये नहीं है कि कोई कोयले पे चल सकता है, कोई पानी पे चल सकता है, ये तो भगवान की परिभाषा नहीं है। वास्तव में ऐसे योग की जो सिद्धियां हैं ये अष्टांग योगी को सहज प्राप्त होती है। अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग, अष्टांग योग या ध्यान योग की पद्धति में आठ स्तर बताए गए हैं। तो इन आठ स्तरों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि आठ ऐसे होते हैं। तो योगी अच्छी तरह से इन आठ स्तरों से गुजरते हुए प्रगति करता है और जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो अलग अलग तरह की शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति इत्यादि। इन शक्तियों के बल पर योगी बहुत सारे चमत्कार से चमत्कार कर सकता है, जैसे कि वो छोटे से छोटा हो सकता है, एकदम बड़े से बड़ा हो सकता है, हल्के से हल्का हो सकता है, उड़ सकता है, या भारी से भारी हो सकता है, वजनदार हो सकता है, फिर कोई उसको दुनिया भी उसको हिलाने की कोशिश करे वो हिल नहीं सकता है। और फिर प्राप्ति, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यहां बैठे बैठे अगर उसे आम खाने की या फल खाने की इच्छा हुई तो बाजार में हाथ लगा दिए, यहां से आम छीन लिया किसी सब्जी वाले से या किसी फल वाले से और खा लिया। और ऐसे भी योगिक शक्तियां होती हैं जिनसे आदमी कुछ भी प्रकट कर सकता है, तैयार कर सकता है, यहां तक कि वो एक नया ग्रह भी तैयार कर सकता है। विश्वामित्र मुनि इतने शक्तिशाली योगी बने थे कि वो मनुष्य को भी नारियल की तरह उत्पन्न कर सकते थे, ऐसी शक्ति थी। और उन्होंने एक ग्रह को, लोक को भी तैयार किया। अभी कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो आजकल के योगियों में वो शक्ति नहीं रही जो कि विश्वामित्र मुनि और पूर्व काल के योगियों में रहा करती थी, लेकिन फिर भी कलयुग के हिसाब से अगर कोई ऐसे चमत्कार कर बैठे तो लोग चकाचौंध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे किया इन्होंने। लेकिन वास्तव में इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, इससे आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो केवल एक भौतिक शक्ति है जो सहज आ जाती है। और जो प्रामाणिक अष्टांग योगी होते हैं वो भी इन सिद्धियों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो भक्ति भक्तों की बात तो दूर है। एक बार ऐसे हुआ कि एक गांव में एक व्यक्ति थे जो हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए, और बहुत साल उस व्यक्ति ने तपस्या की किसी साधुओं के संग में रहकर, और 12 साल के बाद अपने गांव में लौट कर आया। तो 12 साल ऐसे तपस्या जब की तो उसके पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति आ गई। तब जो कोई व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक जीवन में आरूढ़ नहीं होता है, उन्नत प्रगतिशील नहीं होता, और उसके पास ऐसे कोई शक्ति या कुछ आ जाती है तो उससे प्रभावित होकर वो पथ भ्रष्ट हो जाता, यह स्वाभाविक है। अभी कोई कच्चा है आध्यात्मिक मार्ग में, परिपक्वता प्राप्त नहीं की है, और उसको अचानक लोग ऊपर उठाते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको महान व्यक्ति बुलाते हैं, तो फिर अगर वो इस प्रशंसा को पचन नहीं कर सकता है, अगर वो सोचता है कि ये प्रशंसा मेरे लिए है और मैं कितना महान हूं, वास्तव में ये लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, अगर व्यक्ति ऐसा सोचता है तो पथभ्रष्ट निश्चित हो जाएगा। तो जब कोई शक्तियां किसी अयोग्य व्यक्ति के पास आती हैं तो इन शक्तियों का प्रयोग वो गलत तरह से करता है, अपने नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और जो वास्तव में शुद्ध भक्त होता है इन शक्तियों के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है। भगवान भक्त को शक्ति हर तरह की प्रदान करते हैं, और भक्त लोग कभी कभी जानते भी नहीं है कि शक्तियां कैसे हो रही हैं उनके माध्यम से, लेकिन भक्त इनके बारे में चिंता भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा नहीं था, क्योंकि केवल सिद्धि प्राप्त कर ली थी लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ था। सिद्धि प्राप्त करने में और हृदय या अंतःकरण के शुद्ध होने में बहुत अंतर होता है। तो ये व्यक्ति जब पानी के ऊपर चलने की शक्ति प्राप्त करके गांव में आया तो स्वाभाविक है कि उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया होगा? सबको दिखाएं, अरे देखो मैं पानी पे चल सकता हूं। स्वाभाविक है। तो फिर उसने गांव की बैठक बुलाई कि देखो मैं आज पानी के ऊपर चल के दिखाऊंगा, प्रदर्शन करूंगा मेरी शक्ति का। तो गांव में हाहाकार मच गया, अरे हमारे गांव का ये कल का बच्चा भी आज पानी में चलने सीख गया है, चलो 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 जाके देखते हैं क्या ये पानी में चल सकता है। तो सभी लोग वहां नदी के किनारे इकट्ठे हुए और ये योगी जो है वास्तव में पानी के ऊपर चलने लगा। चला 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 उस पार हो गया, उस पार होकर फिर से लौट के आ गया और सभी लोगों में हाहाकार मच के सभी लोग उसके पैर पड़ने लगे, उसे भगवान कहने लगे, उसकी पूजा आरती उतारने लगे। और उस व्यक्ति को तो अच्छा लगने लगा कि हाँ अभी मेरी पूजा हो रही है। लेकिन वहां पे एक बूढ़ा बैठा था जो कि माझी था, वो कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो बकवास है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब चीजें क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो इसकी कीमत तो 10 पैसा है, ये सिद्धि की कीमत ये जो कर चुका है ना 10 पैसे की बात। अरे सभी लोग घूम कर देखने लगे ये कौन बीच में ऐसे बोल रहा है, इतना चमत्कार कर दिखाया इस व्यक्ति ने, नदी के ऊपर चल के चला गया और फिर लौट के भी आया और ये कह रहे 10 पैसे की बात है। तो वो योगी तो बहुत गुस्सा हो गया, कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये 10 पैसे की बात है। उसने कहा कि यही चीज मैं 10 पैसे देकर मैं नौके के बैठकर जा सकता हूं, इसमें आपको इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत थी, 10 पैसे की कीमत है इसकी बस, और तो कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा। तो योगी ने कहा मुझे पूरे 12 साल तपस्या करने के बाद में यह फल मिला है। तो दूसरे बूढ़े व्यक्ति कहने लगा कि मुझे तो 10 मिनट काम करके मुझे 10 पैसे मिल जाते हैं, तो जो सिद्धि मुझे 10 पैसे में मिल जाती है आपको 12 साल लगा वो करने के लिए, तो देखिए आप श्रेष्ठ हैं या मैं श्रेष्ठ हूं। तो इस तरह से जन साधारण जो होते उनको ज्ञान नहीं होता कि आध्यात्मिक उन्नति क्या चीज है, और थोड़े बहुत किसी ने चमत्कार दिखा दिए तो उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। कोई किसी ने कुछ विभूति प्रकट कर ली, किसी ने कोई सोना निकाल दिया, सोना चाहिए तो सराफ के यहां जाना है, ज्वेलर्स की दुकानों की कमी नहीं है, जा सकते हैं। अगर विभूति चाहिए, कोई भस्म चाहिए तो भी कहीं से मिल सकता है, लेकिन इससे आध्यात्मिक जीवन का क्या लेना देना है? आध्यात्मिक जीवन का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। अगर वो ऐसे कुछ चमत्कार करें जिससे कि व्यक्ति का हृदय बदल जाए तो वो असली चमत्कार है। प्रभुपाद जी जब पश्चिम देशों में गए थे, लोगों ने उनको पूछा था कि स्वामी जी आप भी कोई चमत्कार कर सकते हैं, यहां बहुत सारे योगी वगैरह आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं चमत्कार दिखाऊंगा आपको, लेकिन वैसे चमत्कार नहीं। और अपने भक्तों की ओर इशारा करके उन्होंने बताया ये मेरे चमत्कार हैं। पहले ये लोग हिप्पी थे, अभी हैप्पी हो गए हैं। हिप्पी मतलब लंबे लंबे बाल रख के, दाढ़ी रख के और शराब गांजा न जाने क्या क्या अलग अलग पदार्थों का सेवन करते थे, मांस मच्छी सब तरह की चीजें, मद्यपान करना सब करते थे। अभी इन व्यक्तियों ने सब कुछ छोड़ दिया, अभी साधु बन गए, संत बन गए। देखो और जो पहले किया करते थे उन चीजों के बारे में बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं, कोई रुचि नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ये मेरा चमत्कार है, वास्तव में ये भक्ति का चमत्कार है। तो भक्ति के चमत्कार में से जो व्यक्ति का परिणाम होता है, जो उसका हृदय हो जाता है, उस हृदय की बात यहां कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। केवल योगी ने थोड़ी शक्ति दिखाकर ऐसे किया तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते और न ही भक्त उससे संतुष्ट होते हैं। हमारे एक मंदिर में एक बार एक ऐसे योगी आए थे, इस्कॉन के मंदिर में, यहां नहीं और एक मंदिर में, और उन्होंने कहा भक्तों से कि मैं आपको बहुत सारे चमत्कार दिखाऊंगा। तो थोड़े भक्त सोच रहे चलो देखते हैं, थोड़े भक्त सोच रहे क्या देखना है, पर फिर भी आ गए। और फिर उसने कहा आप गाड़ी में बैठो, और गाड़ी से रस्सी बांध ली और रस्सी जो है अपने दांत में पकड़ ली और उस व्यक्ति को कहा कि गाड़ी चलाओ, और अपने दांत में रस्सी पकड़ा हुआ था, रस्सी गाड़ी को बंधा हुआ था और उसने जोर से गाड़ी चालू की, एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं चली क्योंकि उसने अपने दांत से ही गाड़ी पकड़ी हुई और रस्सी पकड़ लिया था, तो आगे नहीं गया वो। तो वो सोच रहे थे व्यक्ति कि भक्त लोग वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, तो भक्तों ने कुछ इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। तो इस तरह से उसने ऐसे थोड़े चमत्कार इधर उधर के दिखाए, लेकिन भक्तों में जब बात ज्यादा किसी ने प्रशंसा नहीं की, परवाह नहीं की, लोग उल्टों ने उनको बहुत सारे प्रश्न करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि अभी यहां कुछ फायदा नहीं है तो वहां से चले गए। तो वास्तव में भक्त लोग इन चीजों के बारे में परवाह नहीं करते हैं। अभी आते हैं, कुछ का दान बहुत शक्तिशाली है तो अगले जीवन में कुछ और शेर बनेगा जिससे और शक्तिशाली दान चाहिए, लेकिन यहां मनुष्य जीवन की समसिद्धि प्राप्त करने में अट्टे कट्टे दांत खाने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो गन्ना खा सकेगा अच्छी तरह से, ऐसे और कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे सब चीजें होते। और एक भी बार हमारे संस्था के भक्त बता रहे थे कि कहीं वो एक सभा में गए थे जो बाहर था, और वहां पे पंडाल बना हुआ था, मंच था, पंडाल ऊपर से कवर नहीं हुआ था, और जब कार्यक्रम चल रहा था अचानक वर्षा होने लगी और उस समय सभी लोग चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, कार्यक्रम कैसे पूरा हो जाएगा। तो उस समय वो योगी उठ गया और उठ के उसने केवल ऊपर यूं हाथ कर दिए, और जैसे ही हाथ कर दिया तो बारिश बंद हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अभी आश्चर्य की बात तो ये नहीं है कि उसने बारिश बंद की, आश्चर्य की बात यह है कि उसको भी नहीं पता चला कि मैंने बारिश कैसे बंद कर दी। क्योंकि ये सिद्धियां हैं, ये शक्तियां हैं, लोगों को आती हैं पूर्व जन्म के बल पर। उसने कोई तपस्या की होगी किसी पूर्व जन्म में, उसकी वजह से ये सिद्धि उसको इस जन्म में मिल गई, बचपन से ही आ गई। उसको पता नहीं था कि मेरी सिद्धि क्या है, कैसे चलती है, इसका काम कैसे करता है ये, और मुझ में कैसे आ गई सिद्धि, उसे कुछ नहीं मालूम था। बस एक दिन उसने बचपन में देखा कि मैं कुछ करता हूं तो सिद्धि है, कुछ उठ जाता है, बैठ जाता है। तो इस तरह से ये सब योगी जो हैं, ये शक्तियां प्राप्त करते हैं योग अभ्यास से, पूर्व जन्मों की तपस्या से। लेकिन जो हमारे लिए असाधारण चीज है, अन्य ग्रहों में, अन्य लोकों में कोई असाधारण बात नहीं है। उदाहरणार्थ इसी ब्रह्मांड में सिद्ध लोक और विद्याधर लोक ऐसे लोक हैं जहां पर हरेक व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धियां होती हैं। विद्याधर लोक में वहां लोग हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे हम पानी में तैरते हैं। सिद्ध लोक में हर एक व्यक्ति जो जहां जन्म लेता है, जन्म से ही उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके लिए योगियों को यहां बहुत सालों तक कड़ी तपस्या करके प्राप्त होते हैं, सिद्ध लोक में जन्म से ही स्वाभाविक तौर से उनको प्राप्त होते हैं। और वो लोग उड़ते हैं आकाश में, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक लोक से दूसरे लोक। उनको कोई इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकता नहीं, नहीं हमारे भारतीय रेल की आवश्यकता है, उड़ते हैं जाते हैं। अगर उन्होंने सोचा हमको पृथ्वी लोक में आना है, चलो सोच लिया हमको पृथ्वी लोक में जाना है, तुरंत आकाश पथ से आकर पृथ्वी लोक पहुंच गए। पृथ्वी लोक से सोच रहे हमें महर लोक जाना है, चले जाते हैं। तो ये सिद्धियां उनको स्वाभाविक तौर से प्राप्त है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि उनके पिताजी उनको बचपन में कहा करते थे कि उनके पहचान वाले एक योगी थे जो हरिद्वार से प्रयाग रोज सुबह प्रयाग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते थे। कैसे? जल के भीतर से आते थे रोज सुबह, जैसे लोग घर से दफ्तर जाते हैं ना गाड़ी में, बस में, सुबह जाकर शाम को लौट के आते हैं। तो ये योगी सुबह को जाते थे हरिद्वार से प्रयाग इलाहाबाद, पानी के नीचे से तैरते हुए जाते थे, आधे घंटे में 15 मिनट में पहुंच जाते थे, फिर से त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर से चले जाते थे हरिद्वार। ये रोज का कार्यक्रम उनका, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती भी पानी में हो जाती थी। तो इस तरह से ऐसे योगी हैं, लेकिन भक्त लोग सोचते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, अभी जल्दी से इधर से उधर तैर लिया, मछली का शरीर बन मिल जाएगा, तैरना है तो मछली का शरीर मिलो, फिर आराम से पानी में तैरते रहो। तो भक्त को चाहिए कि वो अपना हृदय शुद्ध करे, पाप की प्रवृत्ति से वो मुक्त हो जाए, इस तरह से जो भक्त होते हैं भगवान की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि में वो सर्वोत्तम भक्त होते हैं। और यहां भगवान बता रहे हैं तमो मतः युक्त तमो मतः, ये मेरा मत है हे अर्जुन। और जब भगवान का मत है तो ये सत्य है, परम सत्य है। तो इस सिद्धांत को की पुष्टि का पुष्टिकरण करने के लिए कि भक्त ही परम योगी है, एक बहुत सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत में, और वो है महाराज अम्बरीश की। महाराज अम्बरीश की कथा नवम स्कंद में आती है। परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे सारे सूर्य और चंद्र वंश के वंशज को, उस समय वो आ पहुंचे महाराज अम्बरीश तक, और वो कहने लगे कि महाराज अम्बरीश बहुत महान भक्त थे। इतने महान भक्त थे कि एक योगी ब्राह्मण का शाप भी उनके ऊपर व्यर्थ गया, उस शाप काम नहीं किया। तो उस समय परीक्षित महाराज ने पूछा, ये ब्रह्म दंड या ब्रह्म शाप जो होता है बहुत प्रभावशाली बहुत शक्तिशाली होता है, तो ये कैसे हुआ कि महाराज अम्बरीश के ऊपर ये ब्रह्म शाप ने काम नहीं किया? महाराज अम्बरीश के अंदर ये कौन सी शक्ति थी जिससे वो ब्रह्म शाप से भी मुक्त हो गए, कोई प्रभाव नहीं हुआ ब्रह्म शाप का? तो उस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज अम्बरीश के बारे में वर्णन करने लगे, कहने लगे कि महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान की सेवा के अलावा वैष्णवों की सेवा भी हमेशा किया करते थे, और जिस तरह से वो सेवा करते थे उनकी प्रजा भी सेवा करती थी, कि उन्होंने अपने प्रजा को भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन कराया था। हालांकि उनके पास सारे धन संपत्ति थी पृथ्वी की, फिर भी सारे ब्रह्मांड को वो केवल एक पत्थर के समान समझते थे। वो जानते थे कि जो मेरे पास ऐश्वर्य है धन संपत्ति है, ये केवल एक स्वप्न की धन संपत्ति की तरह है। वास्तव में जो भी हमारे पास धन होता है ये सपनों का धन है, सच्चा धन नहीं है। केवल जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, ये धन इतना है उतना है, ये धन हमें आनंद दे सकता है, सुख दे सकता है, जिस तरह से एक स्वप्न में किसी व्यक्ति को आनंद मिलता है, इससे ज्यादा नहीं है। तो महाराज अम्बरीश इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इतने ऐश्वर्य धन संपत्ति के बीच में रहते हुए भी महाराज अम्बरीश हमेशा निरासक्त रहते थे, हमेशा भगवान की सेवा में मग्न रहते थे, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। और सुखदेव गोस्वामी आगे चल के वो वर्णन करते हैं कि किस तरह से सुखदेव महाराज अम्बरीश भगवान की भक्ति करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश हमेशा अपनी मन ही मन में भगवान का स्मरण किया करते थे। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण किया करते थे अपने मन ही मन में सदैव 24 घंटे। और वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने जिह्वा से हमेशा वैकुंठ या भगवान श्री हरि या उनके धाम उनकी लीला इत्यादि इनका वर्णन किया करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हस्तकलों से अपने हाथों से हमेशा भगवान के मंदिर का मार्जन किया करते थे। एक बार उनके रानी ने उनको सोचा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप राजा हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोता लगा रहे हैं। महाराज अम्बरीश क्रोधित हो गए, नहीं ये अब सेवा का अवसर मुझसे छीनना नहीं, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो चाहे वो कोई राजा हो, रंक हो, कितना भी बड़ा छोटा आदमी हो, भगवान के मंदिर में आके मंदिर का मार्जन करना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सेवा है ये भगवान के लिए, इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो महाराज अम्बरीश भी किया करते थे। श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदये, अपने श्रुति अपने कर्णों का उपयोग कैसे करते थे, भगवान की सत कथा, भगवान की कथा कृष्ण कथा सुनकर। इस तरह से भगवान महाराज अम्बरीश अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया करते थे। मुकुंद लंग लिंगाले दर्शन दृशो, अपने आंखों को मुकुंद के सुंदर अर्चा विग्रह की सेवा में लगाते थे, दर्शन करने में। तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमा, और अपने स्पर्श का प्रयोग कैसे करते थे, भगवान के भक्तों से आलिंगन करके। घ्राणा, अपने नसिकों का कैसे सेवा करते थे, भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण किए हुए हैं उसका उसको सूंघते थे, उसका सुगंध लेते थे। रसानाम तद अर्पिते, और अपने रस अपने जिह्वा का प्रयोग कैसे करते थे, जो भगवान के के चरण कमलों में प्रसाद भोग अर्पण किया जाता था उसको प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते थे। पादौ हरे हरो हरो क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने पैरों से भगवान की सेवा कैसे करते थे, भगवान के मंदिर में जाकर। अभी आप सब यहाँ आए हैं भगवान के मंदिर में, तो आप भी चल के आए हैं, गाड़ी में भी बैठे हैं, लेकिन गाड़ी तक तो चलना पड़ा, फिर गाड़ी से भी यहाँ आना पड़ा, अब बस से आना पड़ा, मंदिर में ऊपर सीढ़ी में चढ़ना पड़ा, आप में से कोई चल के आए, तो इस तरह से ये भी सेवा है। अपने पैरों से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं क्योंकि आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, या हम जब परिक्रमा करते हैं तो ये भी अपने पैरों से हम भगवान की सेवा करते हैं। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपना सर जो है झुकाते हैं भगवान के सामने, तो सिर से महाराज अम्बरीश उनकी सेवा करते थे। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि महाराज अम्बरीश अपने हर एक अंग से उनकी सेवा किया करते थे। तो ऐसा कोई उनका शरीर का अंग नहीं था वो जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा था। तो ये हमारे लिए आदर्श है। पिछले रविवार को हमने भक्ति शब्द की परिभाषा दी थी, किसी को याद है भक्ति शब्द क्या है, भक्ति का मतलब क्या है? ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ऋषि का मतलब हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश श्री कृष्ण। तो उनकी सेवा में ऋषिकों की सेवा, ऋषिकों का उपयोग ऋषिकेश की सेवा में करेंगे तो फिर इसको भक्ति कहते हैं, कोई भी कर सकता है। और महाराज अम्बरीश ने इस तरह से अपने सारे इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाया और इस तरह से हमेशा मग्न रहा करते थे। तो एक बार ऋषिकेश अम्बरीश महाराज द्वादशी और एकादशी का व्रत कर रहे थे, तो उस समय एक साल पूरा बीत गया था और अंततः तीन दिन में उन्होंने केवल जल के ऊपर उपवास रख के, जब वो और क्रियाएं कर रहे थे जैसे कि उन्होंने स्नान करके आए, फिर भगवान के अर्चक विग्रह की सेवा की, स्नान किया और आभूषण पहनाए इत्यादि, तो उस समय दान दिया तो वहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली योगी ब्राह्मण आए जिनका नाम था दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि शिव जी के पुत्र थे, अंश अवतार, बड़े क्रोधी योगी, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, सभी लोग दुर्वासा मुनि से डरते थे। जब भी दुर्वासा मुनि आते थे तो हड़बड़ मच जाती थी वहां पे, अच्छी तरह से उनकी सेवा करना, उनको गुस्से हो गए तो शाप देकर चले जाते थे, बड़े शक्तिशाली योगी थे। तो महाराज अम्बरीश ने उनको उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और उनके उनके चरणों में बैठे और उनसे कहा कि कृपा करके आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए, कहा कि अवश्य मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा स्नान करके आता हूं, फिर मेरे गायत्री मंत्र का जाप करना है, निराकार पे मुझे थोड़ा ध्यान करना है। तो फिर वो पास में नदी थी, जमुना जी थी, वहां पर जाकर वो स्नान करने लगे और अपना ध्यान और गायत्री करने लगे। उस समय महाराज अम्बरीश ने देखा कि अभी समय बीतते जा रहा है और पारण का समय अर्थात उपवास तोड़ने का समय बहुत नजदीक है, और अब क्या किया जाए, अगर दुर्वासा मुनि के लौटने की तक इंतजार किया जाए तो व्रत का भंग हो जाएगा, और अगर उनके आने के पहले अगर मैं प्रसाद ले लूं तो फिर ये अतिथि का तिरस्कार हो जाएगा, खास करके ऐसे महान ब्राह्मण का। तो बड़े दुविधा में पड़ गए। तो अपने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछ लगे कि मैं क्या करूं। ब्राह्मण भी कुछ कह नहीं पाए, सही सलाह नहीं दे पाए। तो फिर अम्बरीश महाराज ने अपने बुद्धि से सोचा कि अगर मैं जल पी लेता हूं तो जल पीना ये प्रसाद लेना भी है और नहीं भी लेना है, तो उपवास तोड़ना भी माना जाता है, नहीं तोड़ना भी माना जाता है। तो फिर उन्होंने जल का पान किया एक दो बूंद, जिससे कि उनका पारण हो गया, व्रत का पारण, उपवास का पारण हो गया, और साथ साथ नहीं लेने के बराबर भी हुआ, ताकि ब्राह्मण का भी तिरस्कार नहीं हुआ। तो थोड़े समय बाद में दुर्वासा मुनि लौट कर आए, और जब लौट कर आए प्रसाद के लिए बैठने ही वाले थे, तो उस समय अपने योग सिद्धि से उनको पता चला कि अभी अम्बरीश महाराज ने प्रसाद ले लिया है। बहुत क्रोधित हो गए, अरे देखो इस बहुत क्रूर व्यक्ति को, अपने आप को राजा कहलाता है लेकिन वास्तव में अपने आप को ईश्वर मानता है, ये तो भगवान का भक्त है नहीं और इसे कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल असंस्कृत आदमी है ये। इस तरह से क्रोधित होकर अम्बरीश दुर्वासा मुनि ने अपने बाल छीन लिए, अपने सिर से दो चार बाल निकाल दिए, और फिर उनसे एक भयंकर राक्षस का को उत्पन्न किया। और ये राक्षस वो इतना तेजस्वी उसका शरीर था, अग्नि जैसा शरीर, जैसे कि सृष्टि के संहार पर समय जो अग्नि होता है उस अग्नि की तरह ये राक्षस था। और ये बहुत ही आक्रमणात्मक दृष्टि से महाराज अम्बरीश की ओर आगे बढ़ रहा था। अभी महाराज अम्बरीश इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान श्री हरि ने उनको अपना सुदर्शन चक्र भेंट कर दिया था, और सुदर्शन हमेशा महाराज अम्बरीश के रक्षा के लिए उनके साथ में रहता था। तो जब ये राक्षस आगे बढ़ने लगा महाराज अम्बरीश की ओर, तो महाराज अम्बरीश इधर उधर भागे नहीं, नहीं महाराज अम्बरीश में चिल्लाए बचाओ बचाओ, महाराज अम्बरीश केवल शांत चुपचाप खड़े रहे। यहां तक कि अपने मन में उन्होंने प्रार्थना तक नहीं की कि हे भगवान हमें बचाओ, बोलने की बात दूर है, सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज अम्बरीश इतने शुद्ध भक्त थे कि वो सोच रहे थे कि अगर ये राक्षस मेरे पास आ रहा है मेरे मुझे मारने के लिए, इसका मतलब है ये भी हरि की इच्छा है, कृष्ण भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है, तो अगर भगवान चाहते हैं कि मेरे देह भस्म हो जाए, चूर चूर हो जाए, तो वही सही, ये भगवान की इच्छा के विरोध करने वाला मैं कौन होता हूं। तो चुपचाप प्रांजलि मुद्रा में कृतांजलि करते हुए वो खड़े थे, जो होगा सो होगा, हरि इच्छा। तो इस तरह से जब अम्बरीश महाराज खड़े थे वो तो सहन कर रहे थे, लेकिन सुदर्शन को सहन नहीं हुआ, तो सुदर्शन चक्र आए, तुरंत उस असुर का भस्म कर दिया। और वहां संतुष्ट नहीं हुए सुदर्शन चक्र का क्रोध, और आगे बढ़े किनके पास, जिन्होंने उस असुर को बनाया था, दुर्वासा मुनि के पास। अब दुर्वासा मुनि के पास जब वो भयंकर अग्नि आई सुदर्शन चक्र की, तो वो वहां से भाग पड़े, अपनी शक्ति योग शक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं रही सुदर्शन चक्र के बारे में के सामने, तो वहां से भागे। कहां भागे? पहले सुमेरु पर्वत के गुफे में भागे, लेकिन वहां भी सुदर्शन चक्र पीछा करते करते आया। फिर सागर के भीतर गए, लेकिन वहां भी सुदर्शन चक्र आया, सुदर्शन चक्र की अग्नि बुझी नहीं पानी में जाके, और फिर पहाड़ में, फिर इधर उधर सारे पृथ्वी लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, अलग अलग लोकों में गए, आकाश में, अंतरिक्ष में, जहां भी जाए वहां पर पीछा 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 करते आए, सुदर्शन चक्र पीछा ही नहीं छोड़े, हाथ धो के पड़ गए सुदर्शन चक्र उनके पीछे। और बेचारे दुर्वासा मुनि भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भाग रहे मतलब क्या, आकाश में उड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति थी, तो उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं तेजी से, पीछे 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 आ रही सुदर्शन चक्र, और ये प्रार्थना कर रहे, अरे छोड़ो छोड़ो कृपा करके, लेकिन नहीं, सुदर्शन चक्र कैसे छोड़ते, भगवान विष्णु के जो हस्त कमल में जो चार उनके यंत्र होते हैं, कमल और शंख भक्तों को वरदान देने के लिए, और गदा और चक्र जो है वो दुष्टों का संहार करने के लिए। तो जो भक्त को नष्ट करने का प्रयास करता है भगवान के दृष्टि से, तो वो दुष्ट है ही, क्यों वो भला कितना बड़ा ब्राह्मण क्यों न हो, इतना बड़ा योगी क्यों न हो, तो जब सुदर्शन चक्र ने देखा तो सहन नहीं कर पाया और अंततः दुर्वासा मुनि पहुंच गए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चरण कमलों में। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाइए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, भाई रॉन्ग नंबर है, अभी हम भी कुछ नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी थोड़ा प्रवचन देने लगे, कहने लगे कि देखो, जिन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा है ना, वो तो हमारे लिए आराध्य देव है। उनके भ्रू केवल उनके भृंग जो है केवल वो आंखों को हिलाते हैं, उससे ही सारे सृष्टि का नाश हो जाता है। केवल वो आंखें एक आंख ऊपर करते हैं तो बस सारा सृष्टि नाश हो जाता है। तो हम सब शिवजी, मैं और अन्य देवी देवता, हम तो उनके सामने क्या है, और भगवान श्री नारायण उनकी शक्ति की क्या कहना, वर्णन करने लगे। अब आप समझ सकते हैं कि दुर्वासा मुनि अभी प्रवचन सुनने के मूड में नहीं थे, है ना? क्योंकि जब सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है, उनको इतना जलन महसूस हो रही है, तो प्रवचन सुनने के लिए वो कुछ अनुकूल वातावरण नहीं है। जैसे कभी कभी पंखा चल जाता है, बाहर गर्मी है और पंखा चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, और हम जैसे कोई प्रवचन दे रहे हैं तो कितने प्रवचन सुनने के लिए इतना ऐसा लगता है कि चलो अभी नींद आ जाए तो अच्छी बात है, सो जाए, एक अनुकूल परिस्थिति तैयार हो जाए, प्रवचन सुनने का मूड इतना तैयार नहीं हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि उस समय कुछ अजीब परिस्थिति में थे, उनको प्रवचन सुनने के वो अभी इच्छुक नहीं थे। कहने लगे, ठीक है, नहीं मदद करना है तो कहीं और भागूं। तो भागते भागते शिवजी के पास गए। अब ये तो शिवजी के पुत्र है, पिताजी पिताजी हमको मदद कीजिए। अरे पुत्र, मैं भी तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकूंगा सुदर्शन चक्र से, क्योंकि हम सब शिवजी, मैं हूं, ब्रह्मा जी हैं और जो भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, हम सब भ्रम में हैं कि हम बहुत महान हैं, ये हमारा भ्रम है। अब शिवजी कह रहे हैं ऐसे, अब शिवजी कह रहे हैं तो हमारे हम लोगों की बात तो क्या है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में सत्य तो ये है कि केवल भगवान विष्णु या नारायण के बल से सारे सृष्टि चल रहा है, और वास्तव में उनके शरण में जाना ही तुम्हारे लिए एक उचित मार्ग है, और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जल्दी से वैकुंठ में जाओ, वैकुंठ लोक में, श्वेत द्वीप में, और वहां पर उनके शरण में जाओ। अब जैसा कि आप जानते हैं, हर एक ब्रह्मांड के भीतर क्षीरोदकशायी विष्णु रहते हैं, श्वेत द्वीप में, क्षीर सागर में, वहां पर अनंत शेष के ऊपर विश्राम करते हैं। लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा करती है। तो वहां जल्दी जल्दी से उड़कर गए दुर्वासा मुनि, उनके पैर पड़े, और पैर पड़ने के बाद वो कहने लगे, बचाइए, अभी आप ही एकमात्र मेरे आखिरी शरण है, इसके बाद मेरा और कोई उपाय नहीं है। तो उस समय भगवान नारायण सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए इसका। तो उन्होंने कहा, बैठो, और उन्होंने सुंदर उनको उपदेश दिया और कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनप्रियः। वो कहने लगे कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, ये जान लो कि मैं मेरे भक्तों का पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं उनका अधीन हूं, और ही अस्वतंत्र इव, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हालांकि सारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री हरि स्वराट हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरी स्वतंत्रता किसके हवाले है, मेरे भक्तों के हवाले है, क्योंकि मैं उनकी अधीन हूं पूरी तरह से, इसलिए मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। ऐसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चुटकी करने से नाचते थे, चुटकी करने से बैठते थे, ये है भगवान, जिनके भ्रू मात्र से हिलने से सारे सृष्टि का संहार होता है, उनकी माता यशोदा के एक भ्रू का आंख ऊपर करने से वो चुपचाप बैठ जाते थे, शरारत करना बंद करते थे। ये है प्रेम की महिमा, भक्ति की महिमा। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, इसलिए अपने स्वतंत्रता को खो बैठते हैं। और फिर वो कहने लगे साधुभिर ग्रस्त हृदयम, ये जो साधु लोग हैं ना, क्या किया उन्होंने, मुझे बांध लिया है और मेरे हृदय में केवल साधु है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। और इसलिए भक्तेर भक्त जनप्रिय, केवल मैं अपने भक्तों के अधीन नहीं हूं, मैं मेरे भक्तों के अधीन भी हूं। और इस तरह से जान लो हे ब्राह्मण कि मेरे जो भक्त लोग होते हैं उनके बिना मेरे सारे दिव्य आनंद, मेरे सारे षडैश्वर्य, इनमें मुझे कोई मजा नहीं आता, कोई आनंद नहीं आता, मुझे कोई रुचि नहीं आती। भक्तों के अलावा मैं मेरे दिव्य धाम का भी भोग नहीं कर सकता, मेरे सारे ऐश्वर्यों का भोग नहीं कर सकता। यह भी स्वाभाविक है। जैसे कि अगर कोई बहुत अमीर आदमी है लेकिन उसके साथ परिवार में बहुत कष्ट है और उसका लड़का उसकी बात नहीं मान रहा है, वो कहीं और चला गया है, वो कुछ और करता है, घर में गड़बड़ है, तो इतना धन होते हुए भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। जब तक घर में प्रेम नहीं होता धन का जो भोग करने का इच्छा नहीं रह जाता। तो उसी तरह से नारायण कह रहे हैं स्वयं, क्या कहते हैं कि जब तक मेरे भक्त नहीं होते मेरे पास, मुझे मेरा धाम का भी भोग करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए मैं पूरी तरह से मेरे भक्तों के ऊपर निर्भर हूं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए अगर भगवान इस हद तक अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हैं, तो भक्तों को कितना दूसरे भक्तों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। इसलिए भक्तों को कभी भी स्वतंत्र अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि मैं अकेले भक्ति कर सकता हूं। नहीं, जब भगवान अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं अपने भक्तों की, तो हम कहां से कर सकते हैं भगवान की भक्ति। तो फिर कहने लगे कि अरे जान लो कि मेरे जो भक्त हैं इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, और इसलिए मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूं। अपना घर, अपना धन, अपना नाम, इज्जत, सब कुछ मेरे लिए त्यागा है, तो ऐसे लोगों के लिए भला मैं मेरा सब कुछ त्यागने के लिए तैयार कैसे ना हूं। मैं भी मेरा सारा ध्यान त्यागने के लिए इनके लिए तैयार हूं। ये है प्रेम का आदान प्रदान। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ, मेरा धाम भी त्यागने के लिए मेरे भक्तों के लिए तैयार हूं। और फिर वो कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं मुझे वश में करते हैं। कैसे वश में करते हैं? सत पत्नी सत पति यथा। वो कहते जिस तरह से एक पत्नी होती है बहुत धार्मिक होती है, पतिव्रता होती है, किस तरह से प्रेम से वो अपने पति को वश में करती है, सेवा करके अपने पति को वश में करती है, ना कि डांट के। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं इतनी प्रेम से मेरी सेवा करते हैं कि ऐसे प्रेम मेरा हृदय जीत लेता है, और इसलिए मैं उनके वश में आ जाता हूं। और इसलिए हे ब्राह्मण साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मत अन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपी, कि मेरे हृदय में केवल साधु है, साधवो हृदयम मह्यम, मेरे हृदय में केवल मेरे भक्त हैं, साधुनाम हृदयम त्वहम, और साधुओं के हृदय में केवल मैं हूं। मत अन्यत ते न जानन्ति, मुझसे अलावा मेरे अलावा उनको कुछ मालूम नहीं है, और मुझे मेरे भक्तों के अलावा और कुछ नहीं मालूम। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए भगवान श्री हरि वर्णन कर रहे हैं वैष्णवों की महिमा, और कहते हैं कि भक्त वो होता है जिसको भगवान के अलावा, विष्णु या कृष्ण के अलावा और कोई नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, और भगवान वो होते हैं जिनको अपने भक्तों के अलावा और कुछ नहीं मालूम। यह है प्रेम का संबंध। इसलिए भगवान नारायण कहने लगे इसलिए मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, हालांकि ये सुदर्शन चक्र भी मेरा ही चक्र है, लेकिन मेरे हाथ के बाहर चला गया मामला, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, हे ब्राह्मण जाओ, बहुत जल्दी जाओ तुम मेरे भक्त के पास, और उसके पास जाकर उसकी क्षमा याचना करो। तब कुछ उपाय हो सकता है। ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या ये बहुत उचित चीज है, उसके लिए उसके चरित्र के लिए एक अलंकार है। लेकिन जब किसी अयोग्य व्यक्ति के पास शिक्षा तपस्या इत्यादि आ जाता है तब वो उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए वो अच्छा नहीं होता, उसको शोभा नहीं देता। इस तरह से है ब्राह्मण, हमेशा जान लो कि जब किसी के पास ऐसा ऐश्वर्य तेज शक्ति होता है और इस तेज का प्रभाव वो मेरे भक्त के ऊपर प्रयोग करता है तो वही शक्ति उलटकर उसके ऊपर ही आ जाती है और उसी को नुकसान पहुंचाती है जिसने तेज का प्रयोग किया था। जैसे कि हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप सारे ब्रह्मांड का राजा था और हिरण्यकश्यप ने अपना पूरा बल लगाया किसके ऊपर? प्रहलाद के ऊपर, केवल एक 5 साल का बालक। लेकिन क्योंकि प्रहलाद भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त थे इसलिए भगवान ने उनके पूरी तरह से रक्षा की, एक बाल भी बका नहीं प्रहलाद का। लेकिन सारी प्रतिकार कैसे आया? हिरण्यकश्यप के ऊपर ही आया वो, और फिर वो सारा प्रतिकार नरसिंह देव के नखों में आ गया, वो सारी शक्ति, और नखों के माध्यम से उन्होंने फाड़ डाला। जितनी शक्ति का प्रयोग हिरण्यकश्यपु ने किया था प्रहलाद के विरुद्ध, वो सारी शक्ति नरसिंहदेव भगवान ने अपने नखों के माध्यम से उनकी छाती फाड़ कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंहदेव की शक्ति हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ने तक सीमित है, भगवान की शक्ति तो असीमित है। लेकिन हिरण्यकश्यप में जितना अपने भक्त को तंग किया, जितना शक्ति का प्रयोग किया, वही शक्ति मात्र से फाड़ दिया। तो आखिर में शक्ति का प्रतिकार कहा हुआ? उल्टा हिरण्यकश्यप को ही लग गया। इसी तरह से हमें जानना चाहिए कि भक्तों के विरुद्ध हमें कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, और आक्रमण की बात तो दूर है। तो जो लोग इस तरह से वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति ऐसे अपराध करते हैं, तो जो भी कार्य उन्होंने उनके खिलाफ किया है वही कार्य अभी करने वाले के प्रति आ जाएगा। इसलिए हे जान लो दुर्वासा मुनि कि सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का वैष्णव का अपराध किया हुआ है। तो जब अम्बरीश महाराज को ऐसे, दुर्वासा मुनि को ऐसे पता चला कि यही एक उपाय है, तो भागते हुए उड़ते हुए गए अम्बरीश महाराज के पास, पहुंचे, सीधे उनके पैर पकड़ लिए, बहुत जोर से पैर पकड़ा और अपना सर का स्पर्श किया पैरों से, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उस समय अम्बरीश महाराज बड़े शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए कि अरे ये इतने महान योगी ब्राह्मण और कहां मैं एक गृहस्थ और एक क्षत्रिय, ये शोभा नहीं देता। तो जब अम्बरीश, दुर्वासा मुनि कहने लगे कि मुझे बचाइए, अम्बरीश महाराज कहने लगे आप क्या कह रहे हैं, मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, मेरे अंदर तो कोई पात्रता नहीं, मैं तो एक साधारण क्षत्रिय हूं, गृहस्थ हूं। तो उस समय दुर्वासा मुनि कहने लगे अरे छोड़ो ये गृहस्थ क्षत्रिय क्षत्रिय छोड़ो, भाई सुदर्शन चक्र पहले हटाओ मेरे पास से। तो फिर अभी अम्बरीश महाराज ने समझ लिया कि ये तो इमरजेंसी है, अभी कुछ करना चाहिए। तो तुरंत प्रार्थना करने लगे सुदर्शन चक्र से, सुंदर सुंदर स्तुतियां प्रार्थना अर्पण की सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र भी व्यक्ति है ना, जो भी भगवान के सामग्री होते हैं ये भी व्यक्ति हैं। सुदर्शन चक्र भी भगवान के भक्त हैं, उनका गदा है ये भी व्यक्ति है, उनका कमल है वो भी व्यक्ति है। ये कमल इत्यादि के रूप लेते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो खैर उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना की, और आखिर में उन्होंने कहा कि हमारे सारे कुल के भलाई के लिए कृपा करके इस ब्राह्मण के ऊपर आप कृपा करें। अगर हमने कोई भी दान दिया है हमारे पूर्वज में, हमने कोई अगर पुण्य काम किया है, कोई भी धार्मिक क्रियाएं हमने की हैं, अगर हमने कोई ब्राह्मणों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, अगर ये सब पुण्य हमारे पास में है तो मैं इनको एक्सचेंज करना चाहता हूं, मैं इसके बदले में इस ब्राह्मण का प्राण चाहता हूं। अगर आप या भगवान श्री हरि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति करें कि इस ब्राह्मण को बचाएं, इसको नष्ट न करें। और उस समय सुदर्शन चक्र शांत हो गए, शांत हो गए तो पीछे आ गए और फिर दुर्वासा मुनि ने सांस लिया अच्छी तरह से, अभी मैं जीवित हूं। और फिर वो अम्बरीश महाराज का गुणगान करने लगे और कहने लगे कि मैंने तो आपको एक साधारण व्यक्ति सोचा था और आप क्या निकले, मैंने तो सोचा कि आप कोई साधारण गृहस्थ साधारण राजा है, लेकिन मैंने आपके गुणों को आज देखा है, मैंने देखा कि मैंने आपके प्रति इतना अपराध किया फिर भी आपने मेरे हित के लिए सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। आसानी से अम्बरीश महाराज को चाहते तो कह सकते कि कौन से मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, बात को टाल सकते थे, प्रार्थना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि वैष्णव कौन होता है, भगवान का भक्त कौन होता है, आज मैं समझ गया हूं, और आप वैष्णव कितने महान हैं आज मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, और मैं क्या सोच रहा था। इस तरह से अम्बरीश महाराज से कृपा याचना करते हुए दुर्वासा मुनि निकल पड़े आकाश पथ में, और जाते जाते वो अम्बरीश महाराज के गुणगान करते रहे और सीधे वो ब्रह्मलोक की ओर गए जहां ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, और वहां जाके भी सब लोगों को कहने लगे कि अभी मुझे पता चल गया है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो योगियों से श्रेष्ठ होते हैं, जो भगवान श्री हरि का भक्त होता है वही परम भक्त वही परम योगी होता है, और वो हम सब योगियों के लिए भी पूजनीय होता है। तो इस तरह से इस सुंदर कथा से हम जान सकते हैं कि योगी कितने ही अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वही परम योगी होता है, क्योंकि योगी योग मार्ग के सारे जो प्रयोजन है या जो उद्देश्य है उनको प्राप्त कर चुका है, क्योंकि अपने भक्ति से वो स्वाभाविक तौर से भगवान का चिंतन स्मरण स्मरण करते रहता है। इसलिए अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त थे कि दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी ब्राह्मण का शाप भी उनके ऊपर लगा नहीं, तो देखिए उनकी कितनी शक्ति थी। तो इस तरह से हमें किसी साधारण से योग शक्ति से चमत्कार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि असलियत में केवल वैष्णव के गुणों को प्राप्त करना ही हमारे लिए अच्छी बातें हैं, और कोई चीजें के बारे में हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें इस तरह से भक्तों के संग में आकर केवल कृष्ण का नाम का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, नाना प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और वैष्णव के गुण क्या होते हैं इन गुणों का अनुशीलन करना चाहिए, जैसे कि क्षमा है, दया है, प्रेम है, मित्रता है, सहनशीलता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सरदहिनाम् अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। श्रीमद् भागवत में कपिल देव साधु या भक्त का वर्णन करते हैं कि मेरा भक्त कौन होता है, तितिक्षवान हमेशा सहनशील होता है, कारुणिकः हमेशा उसके हृदय में करुणा की भावना होती है दूसरे लोगों के प्रति, सुहृद सब लोगों का शुभचिंतक रहता है, ऐसा नहीं कि केवल मेरे परिवार के लोगों के प्रति मैं शुभचिंता रखूंगा और केवल मेरे समाज के प्रति नहीं, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, सारे प्राणियों के प्रति हितैषी, सुहृदम सर्वदेही नाम सारे देहिनियों सारे प्राणियों के प्रति शुभचिंता। अजात शत्रुवः शान्तः, अजात शत्रुवः मतलब जिसके कोई शत्रु नहीं है, ऐसे साधु भक्त जो होते हैं किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, भले दूसरे लोग उनको शत्रु मान रहे हों वो दूसरी बात है, जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को अपना शत्रु मानते थे लेकिन प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को कभी भी अपना शत्रु नहीं माना। अजात शत्रु मतलब ऐसा व्यक्ति ने कोई जन्म ही नहीं लिया है और न लेगा जिसको कि ऐसा भक्त अपना शत्रु मान सकता है। अजात शत्रु शांत, अपने इंद्रियों को दमन में किया है उसने, वश में किया है, इसलिए शांत है, भगवान का भक्त है। साधव साधुभूषणाः, तो ऐसे जो साधु हैं ये ऐसे गुणों से अलंकृत होते हैं, तो वैष्णवों के जो गुण होते हैं वो वैष्णवों के लिए अलंकार आभूषण होते हैं। जिस तरह से संसार के लोगों के लिए आभूषण क्या होते हैं, सूट बूट पैंट और नाना प्रकार के गहने ये वो पहनते हैं, ये उनका अलंकार होता है। लेकिन भक्तों के लिए अलंकार क्या होता है? वैष्णव के गुण, तितिक्षवान होना, सहनशील होना, कृपामय होना, सबके प्रति हितैषी होना, सबके हित चाहना, ये सब चीजें ये वास्तव में अलंकार होते हैं। केवल सोना चांदी के अलंकार अलंकार नहीं होते, ये वास्तव में अलंकार होता है। तो ऐसे गुणों का अनुशीलन हमें करेंगे तो हम भी परम योगी बन सकते हैं। तो आप सब यहां एकत्र हैं, आप सब योगी हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मत कीजिए अपने आप, क्योंकि योग मार्ग में हमें बहुत आगे चलना है। और अम्बरीश महाराज कभी ये नहीं सोच रहे थे कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं। अम्बरीश महाराज को भी आश्चर्यचकित हुए थे कि मेरी वजह से मुझ में इतनी शक्ति है कि ऐसे बड़े ब्राह्मण को भी कि ये परिस्थिति हो गई। अम्बरीश महाराज सोचने लगे, फिर कहने लगे, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा कोई काम नहीं है, ये तो केवल भगवान श्री हरि का काम है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। हालांकि अपने बुद्धि से समझ सकते थे कि उनकी वजह से ही भगवान ने ऐसे कार्य किया है। मतलब उनके अंदर कितनी शक्ति थी देखिए, आध्यात्मिक शक्ति, कि दुर्वासा मुनि जिसके शाप का प्रतिकार आज तक ब्रह्मांड में इतिहास में कोई नहीं कर पाया था, आज महाराज अम्बरीश ने न चाहते हुए भी कर दिया। अम्बरीश महाराज ने एक बार भी अपने मन में भी सोचा नहीं कि शाप का प्रतिकार होना है या दुर्वासा मुनि को सबक सिखाना है, बिल्कुल नहीं सोचा ऐसे। लेकिन भक्त अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन भगवान उनके लिए सोचते हैं। जैसे क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के लिए सोचते हैं तो भगवान भक्त के लिए सोचते हैं, ये होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। हमारी भावना जैसे होती है भगवान के प्रति, तो भगवान की भावना हमारी ओर होती है। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज के सुंदर उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हमें भी उनके पदचिन्हों में चलना चाहिए और जानना चाहिए श्रद्धा पूर्वक कि यही मार्ग सबसे ऊंचे योग का मार्ग है। हमें इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सर पे खड़ा होना, नाक को नीचे जमीन में दबाना, कहीं और वो खिले के शैया में सो जाना, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए क्या चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा